پوری سورت کے تین حصے ہوتے ہیں، مالک یوم الدین تک اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا نام آ گیا الرحمن الرحیم المالک. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک آیت سیکنڈ پورشن ہے. اے اللہ، میں صرف آپ کی بندگی کرتی ہوں اور کرتا ہوں، اور وہ ایاک نستعین، میں صرف آپ سے مدد طلب کرتا ہوں. گویا کہ ایاک نعبد میں پتہ چلا کہ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے. عبادت کی عموماً چار قسمیں کی جا سکتی ہیں آپ کی سہولت کے لیے: قلبی عبادت، یعنی دل سے جو عبادت ہوتی ہے، لسانی عبادت، زبان سے عبادت جو ہو، بدنی عبادت، یعنی فزیکلی جو کام آپ کریں، اور مالی عبادت، یعنی منی میٹرز. قلبی عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، تقوی، خشیت، توکل، الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، یعنی آپ کے دل کے سارے جذبات اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے اللہ کے ساتھ قلبی تعلق محسوس کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بھی عبادت ہے؟ آپ پر امید ہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ عبادت کی حالت میں ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو وہ لوگ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں نا، وہ مستقل عبادت کی حالت میں، چاہے جائے نماز پہ نہیں بیٹھے. لسانی عبادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کبھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی قرأت کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، تو ہر اچھی بات آپ کی زبان کی عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عبادت کا ایک خاص پوسچر ذہن میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کا دکھ سکھ سن رہے ہیں، کسی کو تسلی دے رہے ہیں، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جا کر اس کو پر امید باتیں کہتے ہیں، یہ سب زبان کی عبادت ہے. پھر بدنی عبادت میں تو نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اللہ کے رستوں میں بھاگ بھاگ کے آنا جانا، دوڑ دھوپ، انتظامات ہو رہے ہیں، رائڈ کدھر ہے، گھر میں کرسیاں لگ رہی ہیں، جلدی کرو مہمانوں نے آنا ہے. یعنی ہمارے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں اپنے جسم کو کھپانے کے لیے. پسینہ جو آپ بہاتے ہیں، یہ آپ کے بدن کی عبادت ہے. خون جو کبھی بہانا پڑ گیا، شہادت کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. اور پھر مالی عبادت میں صدقات، خیرات، اور ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں. اب آپ بتائیے، کیا آپ کو آج عبادت کا ایک کانسیپٹ بڑا ہوا نہیں دیکھا؟ ایک خاص گیٹ اپ کا نام ہی عبادت نہیں ہے. یہ چاروں قسموں کو جمع کر دیں تو ایاک نعبد، اے اللہ میرا دل جھکے گا تو تیرے آگے، میری زبان پہ تذکرے ہوں گے تو تیرے، میرا بدن تھکے گا تو تیرے رستوں میں. ایک مرد رزق حلال کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالے، ماں کو، بہنوں کو، باپ کو سپورٹ کرے، یہ اس کی عبادت ہے. سچا تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کمانا ہے، مردوں کی ساری دوڑ دھوپ جو، یہ عبادت ہے. آپ گھر کا کام کرتی ہیں، صفائی ستھرائی، آپ کی عبادت ہے. اور مالی عبادت تو مال ہے، نیت کیجئے کہ میرا مال صرف اللہ کی رضا میں لگے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد صرف اس چیز میں لگے جس میں آپ کا فائدہ یا دوسروں کو فائدہ ہے. اور جب پھر آپ ایاک نستعین پہ آتے ہیں تو استعانت، مدد طلب کرتے ہیں. اردو میں لفظ سنتے ہیں اعانت، معین، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے. مدد طلب کرنا، ٹو سیک، کسی بھی لفظ کے ساتھ جب الف سین تا آ جاتا ہے نا تو ٹو سیک، طلب پائی جاتی ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اللہ سے ایسے کاموں میں مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ایک قسم یہ ہوتی ہے. دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ کہ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کرنا. میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ دیکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، میں آپ سے پانی طلب کر سکتی ہوں. میرا گمان ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گی اور باہر سے جا کر ایک گلاس میں پانی ڈال کر میرے پاس رکھ دیں گی، یہ بالکل جائز ہے. اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی ود یوزنگ مینس، یعنی آپ کو میں نے پانی لانے کو جو کہا تو اس پانی لانے میں آپ نے اسباب اختیار کیا اور آپ لے کر آ گئی، بالکل جائز ہے. ساری دنیا کا نظام چل ہی اس پر ہے، کسان بیج ڈالتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر اس کو کوئی دانے کو شہر میں لے کے آتا ہے، کئی ہاتھوں سے ہو کر آپ کے گھر میں آٹے کی صورت میں آتا ہے، آپ گونتی ہیں، پکاتی ہیں، گھر والے کھاتے ہیں. یہ ہے ما تحت الاسباب، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. मर्द कमाते हैं, घर की टेक केयर करते हैं, बीवी पैसे मांगती है, कोई बुरी बात नहीं है। मर्द घर आती कहता है बेगम खाना दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी है ना, वो ज़रा सी क्रिटिकल है। सारा शिर्क इंडो पाक का इसी के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द शिर्क जो इस वक्त हमें अपेरेंटली या फिर आप कह लीजिए कि हिडनली दिखता है ना, वो इसमें आता है। वो क्या है? मा फौकल असबाब, बियॉन्ड द मीन्स। वही पानी वाली मिसाल ले लीजिए, मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि आप में से किसी एक के पास यहाँ इतनी ताकत है, शक्ति है, कुव्वत है, पावर है कि यहाँ बैठे बैठे आप पानी का एक गिलास यहाँ हाजिर कर सकती हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अब आप तो जिंदा हैं, मौजूद हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। खुदा ना खास्ता एक शख्स जो फौत हो चुका है हम में से किसी का, वालिद, वालदा, भाई, मामू, चचा, आप उसके बारे में ये सोच लें कि मेरे चचा कब्र में बैठे बैठे या लेटे लेटे मेरे लिए पानी का यहाँ एक गिलास भेज सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल? हो सकता है आपके दुनिया में जो मौजूद जिंदा चचा हैं वो किसी TCS कोरियर सर्विस के हाथों आपको जूस भी भेज दें, लेकिन जो कब्र में है, जो खुद नहीं निकल सकता, तो वो कैसे आएगा? ठीक है, साहबे कराम का ईमान इतना बढ़ जाता था कि वो असबाब के साथ भी मदद थी ना, वो भी नहीं मांगते थे। अगर घोड़े पे बैठे और चाबुक गिर गया तो साथ खड़े को नहीं कहते थे, खुद घोड़े से उतर के उठाते। तो लिहाजा वैयाका नस्ताईन क्या है? अब इन दोनों को अगर जोड़े ना हम, तो क्या था? इयाका नाबुदु और वैयाका नस्ताईन। ये दोनों लफ्ज़ आपको एक बात बता देते हैं, और वो क्या है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा, तभी तो मैं तेरी इबादत करती हूँ, और मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए मैं तुझसे मांगती हूँ। यानी अल्लाह अकबर व इन्नी असगर। हम अल्लाह को बड़ा कहते हैं, लेकिन अल्लाह को बड़ा कहने के बाद भी हम अपने आप को बड़ा कहते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है। असल बात यह है कि जब वैयाका नस्ताईन कहें, तो फिर अल्लाह से कहा करें कि ऐ मालिक तू मेरे लिए इस काम को आसान कर दे। सिर्फ अल्लाह को बड़ा बनाने से बात नहीं बनती, खुद को छोटा भी बनाना पड़ता है। आजजी और इबादत के अंदर तो मोहब्बत भी है, कमाल अलखुब कमाल अज़ुल। मोहब्बत भी अल्लाह से और डर भी अल्लाह का। डर किसका? उसकी नाराज़गी का या अपने गुनाहों का? तो जब आप अल्लाह ताला से इयाका नस्ताईन की बात करते हैं, तो फिर दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह से मांग लो। इतने बड़े दर पे खड़े हो तो जो मांगना है मांगो। वो कहते हैं ना, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। तो मांगने वाले ने सब कुछ छोड़कर एक चीज़ मांगी, और वो क्या थी? हदीना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और दिखा मुझे रास्ता सीधा। ये नहीं कहा सीधी हिदायत ला के घर में दे दे, मैं सो रही थी और मुझे हिदायत मिल जाए, नहीं, रास्ते दिखा और फिर उस पर चलने की तौफीक दे। हिदायत का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, रास्ते पे चला देना, मंजिल मकसूद पे पहुँचा देना। सिरात मुस्तकीम क्या है? वो वाज़ रास्ता जो अल्लाह और जन्नत तक पहुँचाता है। इसको आप दीन इस्लाम कह सकते हैं, किताब व सुन्नत कह सकते हैं, शरिया कह सकते हैं, इस्लामिक लाइफस्टाइल कह सकते हैं। अब ज़रा से लफ्ज़ हिदायत को समझिए और इन्जॉय कीजिएगा। हिदायत से मिलता हुआ कोई लफ्ज़ उर्दू में आता है आपके जहनों में? सोचिए ज़रा। हदिया, हदिया किसको कहते हैं? तोहफे को, गिफ्ट को। तो गाइडेंस इज़ द गिफ्ट। हिदायत अल्लाह का तोहफा है जिसको भी वो दे दे। हमें जो भी चीज़ दुनिया में मिली है, माल, औलाद, घर, गाड़ी, सेलफोन, कंप्यूटर्स, अगर हिदायत ना हो ना तो बेकार है। औलाद है पर हिदायत नहीं है कि इनकी परवरिश कैसे करें, तो वो फितना है। नेमत आजमाइश बन जाती है, फितना बन जाती है जब उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। बिजली नेमत है, किसी को इस्तेमाल नहीं करनी आती, हो सकता है वो इसकी जान ले ले, करंट लगे। तो जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया से गुजार के आखिरत तक ले जा। इस सिर्फ सूरत अल फातिहा पे 10-15 घंटे की तफसीरें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने शायद कोई 20-25 सफ़ा सिर्फ सूरत अल फातिहा की है डेप्थ में। इन डेप्थ में तो ये एक एक लफ्ज़ की तफसीर है, एक महीने से भी ज़्यादा की तफसीर है। आप सर्च आउट कीजिए, इन्हीं चैनल्स को आपको मिल जाएंगी और आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज बस हम ये बात कहते हैं कि दिन सिरातल मुस्तकीम, ये इल्तजा है, ये दुहाई है, अल्लाह ताला के आगे बंदा बिछ ही जाता है, अल्लाह मुझे भटकता बंदा छोड़ना, आई एम लूज़र, मैं गुनाह कर करके थक गया हूँ। और जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं तो साथ ही फिर आप कहते हैं गैरिल मखदूबी, यानी सिराते मुस्तकीम की दुआ तो की। अब सवाल क्या है कि ना उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब हुआ, गैरिल मखदूबी अलैहिम, और ना वलद्दालीन, ना उन लोगों की राह जो राह से गुमराह हुए। तो सवाल पैदा होता है कि ये और शिद्दत क्यों कह दी। देखिए, आप जिस चीज़ के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, तो आप कहते हैं ये ले आइएगा, हाँ लेकिन ये चीज़ ना भूलिएगा। लिस्ट देती हैं बीवियाँ अपने हस्बैंड्स को कि ये सब कुछ ले आए, और फिर जाते जाते कहती हैं दही ना भूलिएगा, अंडे ज़रूर लाइएगा, मतलब ये कि ओवरलुक ना हो जाए। तो यहाँ जो अंदाज़ है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह हमें भटकने ना देना, सिरात अल्लज़ीना अनमत अलैहिम गैरिल मखदूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इसके एंड पे हम कहते हैं क्या पता चला कि हिदायत के एतबार से लोगों की तीन अकसाम। नंबर एक, हिदायत याफ्ता, इल्म हासिल करते हैं आप लोगों की तरह, और फिर उस पर अमल की नीयत भी करते हैं, फिर कोशिश भी करेंगे और एक दिन पूरा इल्म हासिल कर लेंगे। दूसरे, मखदूबिन अलैहिम, यानी जिन पर गज़ब किया गया। ये कौन होते हैं? जिनके पास इल्म तो आ गया पर अमल नहीं करते। क़यामत के 5 सवालों में से एक सवाल होगा कि जो इल्म मिला उस पर अमल कितना किया। और दालीन, गुमराह लोग कौन है? वो कहते हैं ना इल्म लो ना अमल करो। आज भी कुछ लोग कहते हैं कुरान ना पढ़ना, कुरान पढ़ोगे तो अमल करना पड़ेगा। भाई मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि कुरान नहीं पढ़ोगे तो अमल नहीं करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाज़ में बैठा हुआ मुसाफिर अमले को कहता है कि ये सिक्योरिटी की और सेफ्टी की जो वीडियो दिखा रहे हो ये मुझे ना दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने ये दिखा दी तो फिर एमरजेंसी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। भाई अगर आपको नहीं पता होगा और खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ गई तो फिर आप परेशान होंगे। तो बचेगा सिर्फ एक ही गिरोह, जो इल्म हासिल करे इल्म के नाते से, अमल के नाते से, इरादे से। इस वक्त एक बड़ा मुख्तसर सा ये हमारा सफ़र है, हर जुमले के बाद अपने आप से कहा करे अल्लाह अमल की तौफीक दे, अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो ये सूरत फातिहा का खुलासा था। ये आपको एक डायलॉग नहीं लगा? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है 2953 में, कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है। आप जानते हैं हदीस कुदसी क्या होती है? कि अल्लाह सुबहान तआला के ही अल्फाज है लेकिन ज़ुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुए, कसम तो सलात। अल्लाह ताला क्या फरमाया, मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में बांट दी है, आधी नमाज मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे, मसलन मेरा बंदा पढ़ता है, अभी हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की यानी मेरी तारीफ की। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी अजमत और बुजुर्गी बयान की, और अजमत और बुजुर्गी सिर्फ मेरे लिए। फिर मेरे बंदे ने कहा कि या का नाबुदू व या का नस्तईन, और इससे लेकर सूरत के आखिर तक जो बंदा कहता है, फिर अल्लाह ताला उसको कहता है कि अब तू जो मांगेगा मैं वो दूंगा। तो बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो फिर अल्लाह ताला उसकी अता करदा चीज़ें उसको दे देता है। आप देखिए कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा शख्स भी एक से दो बार के बाद आपकी बात सुनकर परेशान होता है, जान छुड़ाने लगते हैं लोग। अल्लाह ऐसा बादशाह है जो आपसे चाहता है कि आप उससे मांगे। और अगर आप पूरी सूरत फातिहा को देखें तो इस एक माइंड मैप की रोशनी में देखिए, अगर आप अपने पास नोट्स में एक तराजू बनाते हैं, आप देखिए एक पलड़े में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, हाँ ये देखिए आप, अर्रहमान अर्रहीम अदल, मालिक यौमिद्दीन, ऊपर क्या लिखा हुआ है बीच में, इय्याका नाबुदु, बस। यानी सूरत का वन पार्ट इया का नाबुदू पे पूरा होता है। चूँकि तू रहमान है, चूँकि तू अल्लाह है, चूँकि तू अर रहीम है, मालिक है, तो फिर मैं तेरी बंदगी करती हूँ। और जब पलड़े के दूसरी तरफ जाते हैं तो या कनस्तईन, अल्लाह मैं आपसे मदद मांगती हूँ, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो क्या पता चला कि इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखा दिया। ये पूरी दुआ है, इसका एक नाम दुआ भी है। हम्दो सना का बयान है, बंदगी का इकरार है, इंसानी बेबसी और लाचारगी का एतराफ़ है, और आखिर में एक आजिज़ाना दुआ है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। आपने सच्चे दिल से दुआ की, अल्लाह ने जवाब में पूरा कुरान खोल दिया। यानी सूरत फातिहा दुआ है, आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे हिदायत चाहिए, आई वॉन्ट टू बी गाइडेड, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उसके जवाब में आपके सामने कुरान खोल दिया, और कुरान की सबसे तवील बड़ी सूरत सूरत अल बकरा आपके सामने खुलती है।